आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
उन्नीस में एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के एक जर्नल से लेख को वापस ले लिया गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी के जांच में ये फैसला सुनाया गया कि एक रिसर्च फेलो ने एक छात्र के काम को चोरी किया है, यानी काम को प्लेजराइज किया गया है। हाल ही में ये केस फिर से खबरों में आ गया है। हम आज चर्चा कर रहे हैं सुर्खियों में आया हुआ यही विषय, प्लेजरिज्म। जानेंगे एक यूनिवर्सिटी एकेडमिशियन से और एक यूनिवर्सिटी के छात्र से क्या है उनके विचार प्लेजरिज्म पे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुरजीत डोगरा धानजी, जो कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर हैं। तो डॉक्टर धानजी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
तो डॉक्टर धानजी, सबसे पहला सवाल ये आता है, प्लेजरिज्म को एड्रेस करने के लिए यूनिवर्सिटीज के पास क्या नीतियाँ या प्रक्रियाएं होती हैं?
देखो ना, सब स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे लोकल हो, यूनिवर्सिटीज पर प्लेजरिज्म डिटेक्शन जो होती है ना, वो सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है। उसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या जो पॉपुलर उसका पॉपुलर टूल कहते हैं टर्न इट इन। तो ये AI से पहले तो वो ऑर्डिनरी डिटेक्शन कर लेती थी कि यू नो प्लेजरिज्म हुई है कि नहीं, पर अब तो AI भी जनरेटेड जो कंटेंट है ना वो भी डिटेक्ट हो जाता है। प्लेजरिज्म के लिए यूनिवर्सिटीज ने बहुत तरक्की की है, सभी की पॉलिसीज उनकी वेबसाइट पर है। देखो ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, उनकी प्लेजरिज्म पॉलिसीज है दो, एक है MFP 1310, दूसरी है AI पॉलिसी, दोनों ही उनके वेबसाइट पर है। शुरू पर स्टूडेंट्स जब चालू करते हैं ना अपनी पढ़ाई, तो उनको पहले ही इनको ये प्लेजरिज्म की पॉलिसीज का नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम अगर तुम प्लेजरिज्म करोगे तो ये आउटकम होगा आपके लिए।
और मान लीजिए डिटेक्ट हो गया, अब आजकल तो इतना जैसे आप बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कॉमन हो गया है, आपके पास ChatGPT है, आपके पास Claude AI है, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, तो कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर्स में कहीं ना कहीं उपयोग हो जाता होगा। तो एक बार मान लीजिए डिटेक्ट हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है?
फिर उनको दे हैव टू डिफेंड देयर, पहले तो उनको मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट पे, 20% उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, 100 में से कह दो 20% प्लेजरिज्म डिडक्शन हो जाता है। मैंने तो खुद केस नहीं कोई सुने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न पर फिर भी स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमिक इंटेग्रिटी दिखानी पड़ती है। क्या आजकल तो तुम कहते थे कि ChatGPT है, पर दूसरे भी प्रोग्राम्स है, अगर स्टूडेंट्स मानो ग्रामरली यूज करे या अपनी ग्रामर चेक करने के लिए, या वो पंजाबी और हिंदी में असाइनमेंट करे और फिर उसको ट्रांसलेट ChatGPT कर ले, काम तो उसका है ना बेचारे का, स्टूडेंट्स का, पर उसको तरक्की करनी है तो अपनी मतलब शायद उसकी अंग्रेजी इतनी यू नो टॉप क्वालिटी ना हो, तो थोड़ी हेल्प ले लेता है, ग्रामरली से ले लेता है या ChatGPT से यू नो वर्ड कनेक्शंस कर लेता है। फिर दूसरी बात ये है, असाइनमेंट्स थोड़ी उसमें फैक्चुअल भी होती है कि यू नो कोई फॉर्मूला वगैरह उसको डिस्क्राइब वगैरह करना, वो भी कई दफा हो सकता है कि ये इट विल कम ऑन द प्लेटफॉर्म के ये प्लेजरिज्म है। सो प्लेजरिज्म को डिफेंड करना पड़ता है केस, देन यू हैव टू यू नो गिव योर आर्ग्यूमेंट्स व्हाई यू थिंक दिस इज यू नो प्लेजरिज्म और नॉट प्लेजरिज्म, एंड यू हैव टू डिफेंड योर केस, एंड देन इट बिकम्स रादर कन्वोल्यूटेड।
तो जैसे आपने एकेडमिक इंटेग्रिटी की बात करी, तो अगर कोई एथिकल मिसकंडक्ट होता है रिसर्च में, उसका कोई उदाहरण बता सकते हैं?
देखो, मैंने खुद का केस तो कोई सुना नहीं है, पर आई कैन टेल यू के प्रोसीजर क्या होता है। अगर प्लेजरिज्म हुए, वो स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन चले जाता है कि इसमें प्लेजरिज्म है, उसको बुलाया जाता है, उसको फिर बताना पड़ता है कि क्यों ये प्लेजरिज्म है क्यों नहीं है। अगर वो आर्ग्यू कर ले कि यू नो असाइनमेंट में जो मेरा ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ इसमें तो प्लेजरिज्म हो नहीं सकती, या कुछ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दे, जैसे वकील जाता है कोर्ट में यू नो केस लड़ने के लिए, वैसे ही उनको भी केस लड़ना पड़ता है। तो फिर अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसका प्लेजरिज्म रिकॉर्ड नहीं होता, अगर सक्सेसफुल ना हुए तो फिर प्लेजरिज्म की रिपोर्ट मिलती है तो प्लेजरिज्म का स्कोर भी कम हो जाता है उसका. तो बात ये होती है कि फिर लॉन्ग टर्म आउटकम कैन बी क्वाइट बैड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि काम तुम चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर से कहाँ से वो चिट्ठी नहीं लिखा सकते या रिकमेंडेशन या रेफरेंस नहीं लिखा सकते. स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सोचकर करना पड़ता है आजकल हायर एजुकेशन के लिए.
तो जिस तरह से आपने कहा कि एक लॉयर की तरह जैसे कोर्ट केस होता है आप जाते हैं, अगर मान लीजिए वो दोषी पाए गए हैं तो उसके क्या परिणाम है? क्या ये जो रिपोर्ट है ये आपके रिजल्ट्स के साथ हमेशा रहती है?
यूनिवर्सिटी को जो आपको रिजल्ट आपकी स्क्रिप्ट मिलती है ना जब आप कोर्स खत्म कर लेते हो, उसके ऊपर तो नहीं होगा प्लेजरिज्म पर उसका मार्क लो हो जाता है ना. अगर देखो आपने H1 करना है, H1 75% हायर मार्क होना चाहिए, तो अगर वो H1 से H2 होए या उससे नीचे होए तो फिर वो भी पूछ कोई आप इंटरव्यू कर लिए जाए तो कहे आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं इस असाइनमेंट पर, इस सब्जेक्ट में आपके बड़े हाई स्कोर है, इसमें क्यों कम है. फिर उस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या लोकल स्टूडेंट्स को फिर समझाना पड़ता है कि क्यों मार्क कम हुआ है. हो सकता है वो कह सकता है मैं ठीक नहीं था, मैं बीमार था या कुछ पढ़ाई नहीं की, हो सकता है. पर फिर भी थोड़ी डाउट आ जाती है उस पर कि क्यों इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले और सभी दूसरों में नहीं मिले, अच्छे मार्क्स मिले.
जी, तो डॉक्टर दान जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज द्वारा प्लेजरिज्म से निपटने के तरीके में कोई सुधार आना चाहिए या कोई परिवर्तन आना चाहिए?
AI के साथ अभी सॉफ्टवेयर तो सब कुछ है, पर अभी टीचिंग सिस्टम्स भी चेंज करने पड़ेंगे तो कि स्टूडेंट्स को वो ऐसे ना लगे कि वो ChatGPT पर जाकर असाइनमेंट देख लें. कोई सवाल उस पर टीचिंग में ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे शतरंज की बाजी होती है, यू कांट ऑलवेज लुक ऑन ChatGPT की अगली मूव कौन होनी चाहिए, कैसा हो सकता है, क्योंकि देयर आर टू मेनी, तीन चार रास्ते भी हो सकते हैं. सो जो पढ़ाई है उसमें अभी सुपर टीचर्स को, लेक्चरर्स को ये भी सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को कैसे हम पढ़ाएं तो कि वो खुद उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रेजेंट कर सके. तो दे डोंट रीच आउट टू ChatGPT या ग्रामरली या गूगल स्कॉलर में टू फाइंड दी सॉल्यूशंस एंड दी आंसर्स. सो स्टूडेंट्स बोथ लेक्चरर्स को भी ये देखना पड़ा हायर एजुकेशन के लिए कि टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ने असाइनमेंट्स भी ऐसे डिजाइन करनी पड़ती है कि यहाँ स्टूडेंट्स को खुद सोचना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर तो है, सॉफ्टवेयर में तो चेक कर लेंगे टर्न इट इन के लिए, तो ChatGPT का AI का सब कुछ देखें, असाइनमेंट्स उस पर रन कर सकते हैं देखने के लिए कि प्लेजरिज्म है कि नहीं. बट आर्ग्यूमेंट है, जैसे वकील अपना केस लड़ता है उसको भी स्टूडेंट्स को भी लड़ना पड़ता है. बट इट्स रिस्की थिंग टू गो टेक द रूट ऑफ प्लेजरिज्म, बेस्ट टू अवॉइड इट.
जी, अब बात कर रहे हैं भव्या शर्मा से जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से मास्टर्स इन मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं। भव्या का मानना है कि समय की कमी के कारण कई बार AI और ऑनलाइन टूल्स का सहारा लेना पड़ता है असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए.
मुझे लगता है कि हमारा जो सेमेस्टर रहता है वो काफी रिग्रेसिव रहता है. We have 12 weeks. अगर मैं अपना उदाहरण दूँ तो हमें 12 वीक में सारा पढ़ना भी होता है और सारे असाइनमेंट भी करने होते हैं और उसके साथ साथ बहुत चीजें चल रही होती है लाइफ में, हमें पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, घर होता है, ये होता है, तो हम सब खुद कर रहे होते हैं. तो वो 12 हफ्ते काफी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी काफी हैवी होते हैं एट टाइम्स, स्पेशली एट अ मास्टर्स लेवल. They expect some really quality work to be delivered. So, अब digital age में हम definitely internet का सहारा लेंगे हमारी research के लिए, पूरा assignments खत्म करने के लिए, to deliver good quality information. तो मुझे लगता है definitely the internet and doing our research online वो हमें काफी help करता है. To submit something quality and in that short span of time, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साथ साथ और साथ साथ वो हमें बता रहे हैं कि कैसे असाइनमेंट करना है, क्या क्या उसमें करना है. तो वो सब साथ साथ चल रहा होता है, तो वो काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो ऑब्वियसली इंटरनेट हेल्प्स अस एंड डूइंग आवर रिसर्च ऑनलाइन, क्योंकि काफी सारे आर्टिकल्स अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं और जो हम यूज करते हैं रिसर्च पेपर्स वगैरह हमारे असाइनमेंट के लिए.
भव्या बताती हैं कि सही साइटेशंस के लिए वो एक ऑनलाइन टूल माय बिब का सहारा लेती हैं।
एक जो मैं काफी यूज करती हूँ इज कॉल्ड माई बिब, विच बेसिकली वो साइटेशन भी क्रिएट करता है और हमारे साइटेशन जो हमें असाइनमेंट में डालने होते हैं लास्ट में उनको ऑर्डर में भी डाल देता है. तो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, क्योंकि जब हम असाइनमेंट कर रहे होते हैं हमारी काफी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, तो हम हर चीज खुद से मैन्युअली नहीं कर सकते, हम उतना टाइम नहीं दे सकते उन चीजों को. तो जो ये सिंपल चीजें हैं जो हमारे लिए एक ऑनलाइन टूल कर सकता है हमारा टाइम बचाने के लिए, तो व्हाई नॉट यूज इट.
अच्छा, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आपकी यूनिवर्सिटी छात्रों को प्लेजरिज्म के बारे में संबोधित करती है, यानी एड्रेस करती है?
जी, जितना मैं जानती हूँ जितना मैंने देखा है, यस वी आर टोल्ड अबाउट नॉट यूजिंग डायरेक्टली ऑफ द इंटरनेट, और कुछ सा हमारा ओरिजिनल काम होना चाहिए, और अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें वो रेफर करना चाहिए, साइट करना चाहिए. तो वी डेफिनेटली टोल्ड अबाउट दैट, बट मैं बहुत श्योर नहीं हूँ. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो लेक्चर में था या अलग से सेमिनार था.
चलिए आखिरी सवाल भव्या आपसे, कभी ऐसा लगा है कि आपने देखा हो खुद से या सुना हो कि क्लास में लगा कि किसी ने किसी का काम कॉपी किया है?
मैंने ऐसे तो नहीं सुना है कि किसी ने किसी का काम कॉपी किया है. हाँ, मैंने ये सुना है कि किसी ने किसी पहले जिसने वो कोर्स किया है उसका असाइनमेंट रेफर किया हो, जस्ट फॉर एक आइडिया लेने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्रिएट करने की. क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और साथ साथ वो हमें असाइनमेंट के आगे बताते हैं कि उसमें कैसे कैसे करना है आगे. तो व्हाइल वी आर एट इट, आई हैव सीन माई पियर्स रेफर टू समवन एन ओल्डर असाइनमेंट टू जस्ट गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना चाहिए, जस्ट फॉर आइडिएशन रेफरेंस बेसिकली. थैंक
हमसे बात करने के लिए धन्यवाद भव्या।
यू सो मच फॉर हैविंग मी.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।